ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
हाल ही में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और इस समिति द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और साथ ही कई परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई। निर्णय में जैसे कि भारतीय रेलवे में 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी देना, स्वच्छ संयंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण और प्रधानमंत्री G1 योजना में संशोधन करना हो। आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
प्रसाद जी। सबसे पहले कैबिनेट समिति द्वारा 8 रेलवे परियोजनाओं पर आप कुछ प्रकाश प्रदान करें और उनके क्या मुख्य उद्देश्य हैं?
देखिए, हम सब जानते हैं कि रेलवे जो है कहा जाता है कि भारत का लाइफलाइन है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग रोजमर्रा अपनी जिंदगी का व्यापन करने, चाहे वो अर्बन लोकेलिटी से शहरी स्थानों में आवाजाही के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ Tier 2 सिटी से लेकर Tier 1 सिटीज के लिए, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें मालूम है कि आसपास के जो हमारे शहर बसे हुए हैं वहां से लोग पलायन करते हैं, रोज दिन में आते हैं। तो एक तरह से रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है पूरे देश के लिए और पूरे देश को जोड़ता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर इधर कच्छ से लेकर अब तो नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल तक आपकी लाइन पहुंच गई है। तो ये सब चीजें हैं तो बहुत जरूरी है। और आपने जिसका जिक्र किया, जिस 8 परियोजना का, ये अगर आप देखें व्यापक तौर से जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति का जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है उसके तहत जो पूरी खाका तैयार किया गया है उसमें यह है कि मल्टी मॉडल, यानी कि ना सिर्फ ट्रेन, बस और तमाम सारे जो यातायात के साधन है उनको कहीं ना कहीं जोड़ के एक तरह से बिना कोई परेशानी के एक स्थान से दूसरे स्थान और अपने गंतव्य पहुंचने के लिए अन्य माध्यम से भी, अगर आपको चाहिए रेल से आगे रोड की सुविधा हो, रेल से आगे समुद्र के या रिवर के तरीके, तो इस तरह से पूरी एक खाका खींचा हुआ है। तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं 7 राज्यों में और ये 8 प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र किया, करीब 14 जिलों को ये कवर करेगा। और इस वक्त जो नेटवर्क है रेलवे का उसमें मान के चलिए 900 किलोमीटर का इसमें बढ़ोतरी होगी और कई सारे तो ऐसे जगह हैं जो बिल्कुल पिछड़े इलाके माने जाते हैं, तो ऐसे में उनको आप जोड़ी रहे, क्योंकि इससे एक तो ये है कि जो हमारे यहाँ काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, लोगों को आवाजाही में जैसे सुविधा होगी और साथ ही अलग अलग प्रांतों से जो लोग पलायन करते हैं काम के लिए उनके लिए भी सुविधाजनक होगी।
जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का नए भारत को लेके एक सपना है, तो आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगी और खास तौर पे आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से ये कैसे योगदान देते हैं।
हम सब जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये जब आपका देश में विकसित होगा तो जरूर ये इससे निश्चित रूप से एक जो सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है वो है कि आपके लिए रोजगार और साधन अपनी कमाई का होता है और लोगों के लिए सबसे होता है व्यवसाय अपना कर सकें एक स्थान से दूसरे स्थान जाके। अगर आप छोटे लेवल पे भी आप मैन्युफैक्चरर हैं या हथकरघा के लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं। और जो मैंने आपको कहा कि 14 ऐसे जिले हैं जो कि जिसमें उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, जिसे 900 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे, माना जा रहा है कि इसमें 6 तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि वे जिले जिनको सरकार की तरफ से चिन्हित किया गया जहां के लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन स्तर बढ़ाएं और उनके पास अगर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो। और माना जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के तहत करीब 64 के आगे आपके नए रेलवे स्टेशन बनेंगे जो कि सीधा सीधा 500 से ज्यादा गांव और 40 लाख की आबादी को छुएगा, मतलब इतना व्यापक तौर पे। और जिस बात की आप कर रहे हैं, एक तो विकसित भारत ये कि कोई भी हमारा देश का प्रांत पिछड़ा ना हो और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जीवन व्यापन के लिए हम उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें।
इसमें खास तौर पे हमने देखा कि जैसे अजंता की गुफाओं को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की बात कही गई है, तो विशेष रूप से पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को कैसे फायदेमंद होगा, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें।
जी, जैसे हम सब जानते हैं अजंता केव हमारे यूनेस्को का विश्व विरासत है और आइडेंटिफाइड है, तो पूरे विश्व से लोग आते हैं और अपने देश के भी जो नागरिक हैं वो अलग अलग पर्यटन के लिए जब जाते हैं तो इस तरह अजंता केव्स के लिए जाते हैं। तो ये एक जरिया बन जाएगा जब आप इस रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ेंगे, नहीं तो अभी तो आप समुद्र के रास्ते बोट्स पे लोग कई जगह जाते हैं, जैसे अजंता एलोरा केव्स बॉम्बे के पास काफी मशहूर है, तो कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो हमने कई और प्रांतों में देखा है, तो सुविधा होती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, और खासकर ऐसे विश्व धरोहर देखने के लिए और ज्यादा लोग, जैसे हाल फिलहाल में हमने देखा है जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना केवड़िया में, पूरा इलाका विकसित किया गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट, लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि हमारे देश के पर्यटक और विदेश से भी लोग वहां पे पहुंचते, तो इसी तरीके से ये एक जरिया माना जाएगा
जो ये परियोजनाएं लेके आई जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये रोजगार जनरेट करने में, रोजगार को लाने में कैसे लाभदायक होगा?
जी, भारत सरकार का अनुमान है कि इसमें दो मुख्य बातें हैं। ये प्रोजेक्ट जो है कहते हैं कि सीधा सीधा करीब 3 करोड़ मैन डेज, मतलब जब ये रेलवे की लाइनें बनेंगी और तमाम सारी चीजें सुविधा वहां पहुंचाने की प्रयास होगा, तो इसमें 3 करोड़ मैन डेज का काम, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट, सीधा सीधा लोग कार्य करेंगे। और साथ जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कॉस्ट है जो कि 2030 और 2031 तक पूरा करना है, करीब 24,500 करोड़ से ज्यादा इसमें लागत है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कोशिश है सरकार की, जैसे पर्यावरण को दृष्टि से भी इन्होंने कहा है कि इसमें कई सारे, एक तो कनेक्टिविटी और जो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने का जो हमारा खर्चा है उसे कम करें, तेल पे जो हम क्योंकि निर्भर हैं, 70% से ज्यादा हम तेल का आयात करते हैं, तो उस पे एक कोशिश, और साथ ही साथ कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कुछ लाइन को स्ट्रीमलाइन किया गया ताकि कम दूरी से आप इसको कनेक्ट करें और जो इलाके कनेक्ट नहीं हुए, जो जिले कनेक्ट नहीं हुए उसको आप इसके तहत जोड़ें। तो ये काफी एक तरह से व्यापक दृष्टिकोण से ये तैयार किया गया है प्लान।
जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी इसमें डिसीजन लिए गए हैं, दोनों ही शहरी और ग्रामीण योजनाएं जो हैं, थोड़ा सा विशेष तौर पे इन दोनों योजनाओं के बारे में बताइए और साथ में ये भी बताएं कि इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं।
मेरे ख्याल से जब से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, लगातार वो प्रयास इसी पे है कि जो हमारे शहर और ग्रामीण इलाके में जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको जीवन में एक अच्छी शैली हो, उसके लिए अपना एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे, तो उनका खुद का एक निवास स्थान हो, तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स रखे गए हैं। तो इसमें दो जो है हम जानते हैं कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चल रहे, एक तो प्रधानमंत्री आवास शहरी और एक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, तो दोनों में अलग अलग वक्त पे स्कीम्स लॉन्च की गई है। तो कैबिनेट की जो फैसला हुआ है, कैबिनेट कमेटी पे है, तो इसमें 3 जो है आवास में करीब माना जा रहा है कि 1,18,00,000 मकान जो है ये प्रधानमंत्री आवास शहरी है, इसको 2.0 का जो बताया गया है, जो मतलब सेकेंड उसका, तो करीब 1,18,00,000 तो मकान बनेंगे, करीब 10,00,00,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी यानी निवेश होगा, और इसमें करीब 2,50,000 के आसपास सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। और इसमें जो एक 2-3 नई चीजें जो दिख के आई है, और इसकी वजह से अगर आप देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अगस्त 15 में लाल किले से ये कहा था कि नई कार्यक्रम लाएंगे प्रधानमंत्री आवास को लेकर, तो उसका कुछ खाका इसमें खींचा दिखा रहा है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो जून माह में इसी साल कैबिनेट में ये तय किया था कि 3 करोड़ मकान बनेंगे शहरी और ग्रामीण आवास के तहत। अगर आप आवास का देखें जो कि शहरी इलाकों में है, तो इसमें एक तो जो है हमारे यहाँ जैसे कहते हैं एक्सट्रीमली वीक जो है लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, उनके पास अलग अलग रखी गई है, जैसे 3,00,000 देंगे सबसे निम्न वर्ग को, फिर 3 से 6,00,000 और 6 से 9,00,000 ये जो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है। और जो मुझे नया चीज लगा है, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्लान है, एक नया स्कीम जो लग रहा है वो है कि इसमें अब आप किराए पे ले सकते हैं, और इसमें कई सारे ऐसे हमारे नागरिक को फायदा होगा जो कि वर्किंग हैं, जैसे महिलाएं हैं और आपके वर्कर्स हैं, जो हमारे यहाँ शहरी में पलायन होता है, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, और स्टूडेंट्स काफी बच्चे हम सब जानते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं अपने एकेडमिक करियर को आगे परस्यू करने के लिए, तो ऐसे में उनके लिए रेंटल का एक प्रोविजन है। तो उसमें 2 मॉडल सरकार ने इसमें तैयार किए हैं जो कि पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में, कुछ तो एक मॉडल है जो कि सरकार के बने हुए जो आवास हैं लेकिन खाली पड़े हुए, हम सब पढ़ते हैं दिल्ली के आसपास कई सारी ऐसी रिपोर्ट छपती आती है कि सरकारी आवास बने हुए हैं, आवंटन हो गया है या आवंटन नहीं हो पा रहा, कई कारण है और खाली पड़े हुए हैं, उनके लिए खरीदार नहीं है, तो एक तो उनका कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा। और दूसरा ये है कि नहीं तो आप खुद से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में खुद से उसको बनाएं, ऑपरेट करें और मेंटेन करें और किराए पे दें, तो इससे काफी हद तक ये समुदाय है जो कि नहीं चाहता दूसरे शहर में अपना मकान बनाए, लेकिन रोजगार के लिए आप वहां आते हैं कुछ महीने कुछ साल रहना चाहते हैं, तो आपको आसानी से किराए पे आपके पसंद अनुसार आपको एक मकान रहने को मिलेगा, एक तो ये है। और जैसे मैंने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग है तो इसमें भी कई सारे। अगर हम चलें ग्रामीण इलाके वाली जो प्रधानमंत्री का है, इसमें 2024-25 से लेकर 28-29 तक का है कि 2 करोड़ से ज्यादा घर बनेंगे, और इसमें भी करीब जो समतल इलाका है उसमें 1,20,000 का प्रावधान है, और जो हमारे पहाड़ी इलाका है जिसमें उत्तर पूर्व के राज्य हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, यहाँ पे 1,30,000 का है। और ये इसमें भी प्रावधान पहले से बना हुआ है, जैसे 2011 का जो हमारे यहाँ सर्वे हुआ था सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो कास्ट सेंसस हुआ था, उसके आंकड़े के बल पे जो प्लान बनाया गया था उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा।
चाहे ग्रामीण योजना है या फिर शहरी योजना है, तो इसके तहत प्रदान की गई जो कुल वित्तीय सहायता है इसे अगले 5 वर्षों में किस तरीके से वितरित किया जाएगा?
इसमें जो स्कीम्स हैं वो कई सारे स्कीम्स के जो है, जैसे शहरी में है उसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना भागीदारी रहेगी, जैसे उसमें है इंटरेस्ट सब्सिडी जो देती है वो जो है सेंट्रल स्कीम हो जाएगी। तो अलग अलग प्रावधान किए गए, केंद्र सरकार के कई सारे जो कल्याणकारी योजना है उसमें जो आवंटन किया गया है उससे कुछ निकलेंगे, और राज्य सरकारों के ऊपर भी होता है कि जो उनके अपने राज्य में लोग रह रहे हैं उनको इस तरह की सुविधाएं दी जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण में थोड़ा सा अलग है, और वो भी इसलिए कि पहाड़ी क्षेत्र अलग है और आपका समतल क्षेत्र अलग है, उसमें भी लिस्ट जो बन गई थी 2018 में उसमें कुछ अभी अगर रिवाइज होना है वो भी करेंगे, और कई सारे जो वेटिंग लिस्ट चल रहा है उसमें भी। तो कोशिश ये है कि अंततः 2 करोड़ से ज्यादा अगर आप मकान बनाएंगे तो उम्मीद की जाए कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा सीधा इसमें लाभ पहुंचेगा। तो व्यापक तौर पे एक तैयारी है कि, और जैसे पूरा सपना देखा गया कि कोई भी झुग्गी झोंपड़ियों में ना रहे, जो कि शहरों में तो हम अक्सर देखते हैं, और ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास धन की वजह से वो अपना पक्का मकान नहीं बना पाते या अधूरा रहता है, तो उन लोगों को इस तरह की वित्तीय सहायता देके उनके जीवन शैली में इम्प्रूवमेंट, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने का सरकार का प्रयास।
प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं और क्या इसमें अंतर है?
मेरे ख्याल से ये जो जीवन योजना ये 2 हैं, एक तो इन्होंने जो तैयार किया है एक मिशन लाइफ, अगर आपको याद होगा कि लाइफस्टाइल जो है हम अपने एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल हम अपने जीवन व्यापन करें, तो एक तो ये है कि इसको कहा जाता है भाई क्लीन प्लांट प्रोग्राम यानी कि बिल्कुल साफ, और हमारा जो स्कीम चलता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसके तहत कोशिश की गई है कि इसमें 4 वर्गों को माना जा रहा है कि सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा, या 4 सेक्टर्स में बांटे हॉर्टिकल्चर में, एक जो बागवानी कर रहे हैं किसान, दूसरा जो हम देखते हैं जो नर्सरीज हैं अलग अलग पौधारोपण जो करवाते हैं जो शहरों में भी लगे हुए हैं उनको, तीसरा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, और अंततः जो कि निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह देखा है कि किसान है जो बागवानी कर रहे हैं उनके पास वायरस फ्री मतलब वायरस के विहीन कोई इस तरह के और हाई क्वालिटी के प्लांटिंग उनको पास सुविधा पहुंचे, और नर्सरीज के लिए ये है कि भाई उनका जो सर्टिफिकेशन हो उसका एक प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो जाए, और जो ग्राहक हैं उनको ये है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो ले सकते हैं वायरस फ्री, और साथ में माना जा रहा है कि जो फल फ्रूट खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी जो गुणवत्ता है वो इम्प्रूव करे। और ये सबसे बड़ा है कि जब आप निर्यात करते हैं आप ना सिर्फ एक उच्च क्वालिटी के सामान आप निर्यात करें, साथ ही साथ वो डिसीज फ्री हो कि उसके वजह से कोई ऐसी कीटाणु या कोई रोग ना हो जो कि अन्यथा सबको हानि पहुंचे। और इसमें जो योजना है माना जा रहा है कि करीब 9 से ज्यादा इस तरह के प्लांट सेंटर अलग अलग शहरों में लगेंगे अलग अलग जगहों पे, जहां पे उन फल के या बागवानी जो करते हैं उनका खास हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर आप लें वहां सेब है, जो नासिक वाला इलाका या महाराष्ट्र के कुछ है वहां अंगूर का है, तो अलग अलग जहां की स्पेशलिटी है उन लोगों को इसका फायदा भी मिले, ताकि लोगों को जैसे मैंने कहा क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग करें। पहले एक जमाने में हमारे यहाँ से भारत से जो फल थे ये हम बाहर नहीं भेज पाते थे, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट फाइटोसैनिटरी कंडीशंस होते थे, हमारे किसान उस लेवल पे नहीं दे पा रहे थे। फिर सरकार के प्रयासों से इस तरह से कोशिश की, और मेरे ख्याल से करीब 2000 के बाद ऐसा हुआ कि भारत के आम जो हैं अब दुनिया के अलग अलग जगहों पे खासकर पश्चिमी देशों में पहुंचने लगे। तो इन सबको अगर आपने एड्रेस करना है और आपको इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव बनना है और प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो ऐसे में हमारे फल फ्रूट जहां बहुत फेमस है तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी, ऐसा मेरा मानना है।
जितने भी फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हमें पूरी उम्मीद है कि ये नए भारत का सपना साकार करने में पूरा साथ देंगे, और केवी प्रसाद जी आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद स्पर्श जी।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।